यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 22 जनवरी 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद WHO में वापसी और पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र ने किया जोरदार स्वागत। भारत में कोरोना वायरस महामारी की वैक्सीन का बड़े पैमाने पर टीकाकरण। UN एजेंसियां कर रही हैं व्यापक मदद। कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्धता में बड़ी विषमता पर WHO ने जताई गंभीर चिंता। और कुछ युवा पृथ्वी चैंपियनों के अद्भुत जलवायु कारनामों की कहानियां। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने WHO के साथ संबंध फिर से स्थापित करने की घोषणा की है। जोसेफ बाइडेन ने बुधवार को इस घोषणा में वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में अमेरिका की पूर्ण भागीदारी जारी रखने की बात भी कही है। UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि WHO को समर्थन दिया जाना COVID-19 महामारी के विरुद्ध दुनिया की एक बेहतर संयोजित कार्रवाई के लिए बहुत अहम है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसस ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने पर जोसेफ बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी जनता को बधाई दी है। उन्होंने ध्यान दिलाते हुए कहा कि वर्ष 1948 में WHO की स्थापना के बाद से ही अमेरिका ने वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि WHO देशों का एक परिवार है और हमें प्रसन्नता है कि अमेरिका इस परिवार में बना हुआ है। ये WHO के लिए एक अच्छा दिन है और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा दिन। उधर अमेरिका के शीर्ष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि उनका देश WHO द्वारा COVID-19 पर काबू पाने के लिए निर्धन देशों की मदद के उद्देश्य से शुरू की गई पहल में शामिल होने के लिए तैयार है। डॉक्टर फाउची ने गुरुवार को WHO के कार्यकारी बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नए राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन जल्द ही एक निर्देश जारी करेंगे जिसके बाद देश कोवैक्स मंच में शामिल हो जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका में पिछले वर्ष लगभग इन्हीं दिनों संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। दुनिया भर में COVID-19 के संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर अब तक 9 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने बुधवार 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद पेरिस जलवायु समझौते में फिर शामिल होने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने राष्ट्रपति बाइडेन की इस घोषणा का स्वागत किया है और वैश्विक जलवायु कार्रवाई की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए नए नेतृत्व के साथ काम करने की उत्सुकता जाहिर की है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों के बाद एक कार्यकारी आदेश जारी किया। इसके जरिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने के फैसले को पलट दिया गया। पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को रोकने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कटौती का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने बताया कि UN प्रमुख ने पेरिस समझौते में अमेरिका की वापसी का स्वागत किया है।
The Secretary General warmly welcomed President Biden's steps to re-enter the Paris Agreement on climate change and join the growing coalition of governments, cities, states, businesses and people taking ambitious action.
महासचिव गुटेरेश ने राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उठाए गए कदमों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। पेरिस समझौते और जलवायु संकट से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी कार्रवाई के लिए सरकारों, शहरों, प्रांतों और व्यवसायों और लोगों का जो बढ़ता गठबंधन है उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताया है। अमेरिका उन 194 देशों में शामिल रहा है जिन्होंने दिसंबर 2015 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने 3 वर्ष पहले इस समझौते से कदम वापस लेने की घोषणा की थी। यह निर्णय नवंबर 2020 में लागू हुआ। पेरिस समझौते में देशों से अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं के जरिए महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उधर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रैंडी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पदभार संभालने पर बधाई दी है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन लंबे समय से शरणार्थियों के लिए एक मजबूत पैरोकार रहे हैं और उन्होंने अमेरिका में शरणार्थियों के पुनर्वास कार्यक्रम को बहाल करने के संबंध में अहम संकल्प लिए हैं, जिसका वो स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप सरकार ने पुनर्वास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत शरणार्थियों की संख्या में भारी कटौती की थी और आप्रवासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर पाबंदियां भी लगाई थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन से पहले की व्यवस्था को बहाल करने के संकेत दिए हैं।
ध्यान दिला दें कि पेरिस जलवायु समझौते के बारे में कुछ और जानकारी हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ी जा सकती है। पता है news.un.org/hi। भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए शनिवार 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू किया गया है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए दो वैक्सीनों को मंजूरी दी है, जिनमें से एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है और दूसरी कोवैक्सीन भारत में ही बनाई गई है। विभिन्न यूएन एजेंसियां टीकाकरण में सक्रिय मदद कर रही हैं। भारत फिलहाल कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में 1,50,00,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और 1,50,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के लिए ये टीकाकरण अभियान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है। यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने इस अवसर पर देश को बधाई देते हुए कहा कि कोल्ड चेन सिस्टम, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी सभी पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। कार्यबल को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और सभी को सुरक्षित रखने व कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वे अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। WHO के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिको एच ऑफ्रिन ने बताया कि संगठन भारत में कोविड-19 की जवाबी कार्रवाई में सहयोग के अलावा तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। उद्घाटन के दिन देशभर में संगठन के कार्यकर्ताओं ने 1,500 से अधिक कोविड टीकाकरण केंद्रों की निगरानी की। उधर भारत से हटकर विश्व स्तर पर देखें तो कोरोना वायरस संकट की पृष्ठभूमि में WHO द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली विश्वव्यापी महामारियों के प्रति समय रहते आगाह करने और पुख्ता जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है। इन विशेषज्ञों ने मंगलवार को अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कोविड-19 महामारी और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए एक नए ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
महामारी से निपटने की तैयारी और जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र आयोग की अंतरिम रिपोर्ट दर्शाती है कि स्वास्थ्य मामलों में मौजूदा रिपोर्टिंग का ढांचा धीमा और बोझिल है। ये प्रक्रियाएं ऐसे सूचना युग के लिए तैयार नहीं हैं, जहां नई महामारियों के फैलने की जानकारी जितनी तेजी से फैलती है, देश उतनी रफ्तार से उनके बारे में जानकारी मुहैया नहीं करा पाते। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री और आयोग की सह अध्यक्ष हेलेन क्लार्क ने कहा है कि देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन को 21वीं सदी के डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। कोविड-19 महामारी पर अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कार्रवाई से सीखे गए सबक की समीक्षा के तहत ही स्वतंत्र आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के मुताबिक देशों ने धीमी रफ्तार से जवाबी कार्रवाई की और शुरुआती चरण में बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय लागू करने के अवसरों को हाथ से निकल जाने दिया। अनेक देशों ने देशों के भीतर और सीमाओं से परे संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मामूली कदम उठाए। कहा गया है कि चीन में पिछले साल जनवरी में ही स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय ज्यादा सख्ती से लागू किए जा सकते थे। ये भी स्पष्ट है कि अनेक देशों में जनवरी 2020 के अंत तक संक्रमणों के तथ्य मौजूद थे और ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पाबंदियां तत्काल लागू की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिपोर्ट में जवाबी कार्रवाई के हर चरण में गंभीर खामियां भी उजागर की गई हैं, जिनमें वर्षों की चेतावनी के बावजूद महामारी का मुकाबला करने की तैयारियों में विफलता भी है।
WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनम गेब्रिसस ने कहा है कि कुछ देशों में कोविड 19 वैक्सीन को पहले केवल अपने जन समूहों को दिए जाने की प्रवृत्ति से इन जीवनदायी उपचारों की न्याय संगत सुलभता पर जोखिम खड़ा हो गया है। WHO प्रमुख गेब्रिसस ने सोमवार को कार्यकारी बोर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन टीकों से आशा का संचार हुआ है, लेकिन ये स्थिति दुनिया में साधन संपन्न और वंचितों के बीच मौजूद विषमता की दीवार में एक और ईंट बन गई है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
अब तक लगभग 50 धनी देशों में 3,90,00,000 टीके लगाए गए हैं, जबकि एक कम आय वाले देश में अब तक केवल 25 टीके ही दिए जा सके हैं। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक ने कहा कि कोविड 19 के दौरान टीकों का तेजी से विकसित होना बहुत मददगार है, लेकिन यह असमानताओं का भी परिचायक है। उन्होंने कहा कि मैं बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि दुनिया एक विनाशकारी नैतिक नाकामी के निकट है और इस विफलता की कीमत दुनिया के निर्धनतम देशों में जिंदगियों और आजीविकाओं से चुकाई जाएगी। सभी देशों में कोविड 19 वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना वैश्विक व्यवस्था कोवैक्स फैसिलिटी का लक्ष्य है, जो अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत अब तक 2 अरब खुराकों की बात तय हो चुकी है, जबकि 1 अरब खुराकों के इंतजाम पर बातचीत चल रही है और इनका वितरण अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि न्यायसंगत सुलभता की भाषा बोलते हुए भी कुछ देश व कंपनियां कोवैक्स से हटते हुए द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता देने में लगे हैं, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और कतार तोड़कर आगे आने की कोशिश हो रही है। यह गलत है। इसके अलावा बहुत से विनिर्माताओं के पास धनी देशों में प्राथमिकता के तौर पर नियामक मंजूरी है, जहां मुनाफा ज्यादा है। इससे कोवैक्स वितरण में देरी होगी और उसी तरह का परिदृश्य उभर सकता है, जिसे टालने के लिए कोवैक्स पहल शुरू की गई है। स्वास्थ्य एजेंसी को आशंका है कि इससे बाजार में अफरा तफरी मचेगी, समन्वित जवाबी कार्रवाई का अभाव होगा और सामाजिक व आर्थिक व्यवधान आगे भी जारी रहेंगे। महानिदेशक गेब्रियसस ने कहा कि पहले अपने देश को प्राथमिकता देने और दुनिया के निर्धनतम और वंचितों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति आत्मघाती है।
पिछले लगभग 2 दशकों में प्रथम बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण संधि शुक्रवार को लागू हुई है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस संधि को विश्व को परमाणु शस्त्रों से मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि परमाणु शस्त्र निषेध संधि TPNW दुनिया भर में सभी के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण के वास्ते बहुपक्षीय रुख को एक मजबूत समर्थन का प्रतिनिधित्व भी करती है। UN प्रमुख ने एक वीडियो संदेश और वक्तव्य में उन देशों की प्रशंसा की है जिन्होंने इस परमाणु शस्त्र निषेध संधि को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने साथ ही इस संधि के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने और अंततः इसे लागू करवाने में सिविल सोसाइटी की बहुत अहम भूमिका का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि परमाणु विस्फोटों और परमाणु परीक्षणों के भुक्तभोगियों ने बहुत दुखद व भयानक अनुभव बयान किए हैं और इस संधि के वजूद में आने और लागू होने के पीछे उनका भी एक नैतिक शक्ति के रूप में योगदान है। इस संधि के लागू होने का बहुत कुछ श्रेय उन लोगों की अथक कोशिशों को जाता है। एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि वो इस संधि के अनुरूप ही संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई की अगुवाई करने के लिए आशान्वित हैं। इस परमाणु शस्त्र निषेध संधि को लागू होने के लिए 50 देशों की स्वीकार्यता की आवश्यकता थी, जो उसने अक्टूबर 2020 में हासिल कर ली थी। अभी तक 86 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में दुनिया भर के 7 युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं को पृथ्वी के युवा चैंपियंस 2020 पुरस्कार से नवाजा। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को स्थायी पर्यावरणीय परिवर्तन से निपटने में अभिनव योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। हवा से पानी निकालने से लेकर प्लास्टिक से फर्श के स्लैब बनाने और मछुआरों को समुद्र से टनों प्लास्टिक निकालने के लिए प्रेरित करने तक ये परिवर्तनकारी साबित करते हैं कि अभिनव विचार और महत्वाकांक्षी कार्रवाई किस तरह पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होती हैं। इनमें जगह बनाने वाले भारत के एक युवा चैंपियन विद्युत मोहन के साथ एक विस्तृत बातचीत हम आपको पहले सुनवा चुके हैं। आइए आज हम आपको कुछ अन्य युवा चैंपियनों के अद्भुत कारनामों से अवगत कराते हैं। सुनिए इस श्रृंखला का पहला भाग।
कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी के युवा चैंपियन ऐसे ही मौलिक नव प्रवर्तक हैं जिन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया लेकिन उसका असर अभूतपूर्व हुआ। पेरू के मैक्स हिडाल्गो ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमजोर समुदायों के लिए एक ऐसी पवन टरबाइन विकसित की जो हवा से नमी को सोखकर पानी का उत्पादन करती है। $70,000 प्रति यूनिट की लागत से विकसित ये तकनीक 100 लोगों के एक पूरे गांव को पानी उपलब्ध करा सकती है। सामान्यतः इतने बड़े गांव के लिए पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करने के लिए लगभग $10,00,000 का खर्च आता है। मैक्स बताते हैं,
Estamos haciendo justamente una implementación con capacidad de 50 litros de agua al día, ¿no? Para que
हमारी क्षमता प्रत्येक दिन 50 से 150 व 300 लीटर तक पानी बनाने की है। हर दिन 300 लीटर पानी की क्षमता वाले यावा उपकरण से हम घृत कुमारी के 2000 पौधे पाल सकते हैं। विश्व जल संस्थान के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2040 तक लगभग 33 देश पानी के संकट का सामना करेंगे। इस तकनीक के द्वारा हवा में मौजूद नमी को सुरक्षित जल में बदलकर मैं प्रकृति के लिए कार्रवाई कर रहा हूं।
संयुक्त राष्ट्र में 2020 के युवा पृथ्वी चैंपियन मैक्स हिडाल्गो के शब्द। उधर कुवैत की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फातिमा अलजिलजिला इको स्टार नामक कंपनी की स्थापना करके कुवैत में रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की कोशिशों में सक्रिय हैं। देश में पहले जहां 90% अपशिष्ट कचरा स्थलों में जमा होता था, 2019 की शुरुआत से इस कंपनी ने 3.5 टन प्लास्टिक, 10 टन कागज और 120 टन धातु का फिर से नवीनीकरण करने में सफलता हासिल की है। फातिमा कहती हैं,
प्रोड्यूसिंग योर वेस्ट इन कुवैत इज वेरी हाई।
कुवैत में भारी मात्रा में कूड़ा कचरा वजूद में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें से केवल 10% कूड़ा ही रिसाइकल होता है और बाकी सारा कूड़ा कचरा विशाल कूड़ा घरों में छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ ज्यादा हरी भरी जगहें भी नहीं है, तो इसके जरिए हम वन संवर्धन की समस्या का भी समाधान निकालने की कोशिश करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में 2020 की युवा पृथ्वी चैंपियन फातिमा जलजला के शब्द। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार हर मिनट दुनिया भर में 1,000,000 प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश की रिसाइकलिंग नहीं होती। इस समस्या से निपटने के लिए केन्या की एक उद्यमी निजाम्बी मार्टे ने एक ऐसी मशीन विकसित की जो प्लास्टिक को फर्श के निर्माण में उपयोग में आने वाली ईंटों में बदल देती है। निजाम्बी मार्टे का आविष्कार न केवल प्लास्टिक को कूड़ा घरों से बाहर रखता है बल्कि पारंपरिक कंक्रीट फर्श वाले स्लैब का एक सस्ता विकल्प भी प्रदान करता है। निजाम्बी मार्टे कहती हैं,
Here in Nairobi, we generate about 500 metric tons of plastic waste every single day.
नैरोबी में प्रत्येक दिन लगभग 500 मेट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा होता है, जिसमें से केवल 1/4 ही रिसाइकल होता है। कंपनियों को कचरे के निपटान के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो हमने उनकी इस समस्या का समाधान कर दिया। अब तक हम 20 मेट्रिक टन कचरा रिसाइकल कर चुके हैं और अगले वित्तीय वर्ष तक 50 मेट्रिक टन कचरे का निपटान करने का लक्ष्य रखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में
2020 की युवा पृथ्वी चैंपियन निजाम्बी मार्टे के शब्द।
इन युवा पृथ्वी चैंपियनों के अद्भुत जलवायु मित्रता कारनामों की वीडियो कहानियां भी हमारी वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। पता है news.un.org/hi। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।